નિયમસાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 317 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વચ્છાયાણં નમો લોએ સવસાહુણં નમી ઉણજિનં વીરં અનંતવર્ણાનદં
શણસહાવં ગોચ્છામિ નિયમસારં કેવલી સુદ કેવલી વર્ણિતમ્.
આચાર્ય શ્રી કુનકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભો મલધારી દેવને તાત્પર્યવૃત્તિ ટીકા લિખી હુઈ હૈ. ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ વો કારણ કાર્ય નિયમ પુસ્તક રૂપ સે પ્રસિદ્ધ હુએ હૈ. અભી હમ યહ પાંચવી પુસ્તક પઢ રહે હૈ ઔર હમ ઉસમે આયે હૈ પૃષ્ઠ સંખ્યા 71 પર 71 એ નઈ ગાથા 124 નંબર કી ઉસકો હમ પઢને જા રહે હૈ. 124 નંબર કી ગાથા. હા દેખો કિમ કાહદી વણવાસો કહાં ગયા કિમ કાહદી વણવાસો કાય કિલેસો વિચિત્ત ઉવવાસો અજ્જયણ મોણ પહુદી જૈન મોણ પહુદી સમદાર હિયસ સમણસ સમદાર હિયસ સમણસ કિમ કરિષ્યતિ વનવાસ કાય ક્લેશો વિચિત્રોપવાસ અધ્યયન મૌન પ્રભૃતય સમતા રહિતસ્ય શ્રમણસ્ય. એ કિસકી પુસ્તક હૈ યહાં પર? એક્સ્ટ્રા પુસ્તક ઉસમે? હા વો દક્ષા કે લિયે હોગી શાયદ. દેખો હમ યહાં પઢતે 71 અભી ગાથા પઢેંગે. કિમ કાહ દિવણ વાસો કાય કિલેસો વિચિત્ત ઉવવાસો અજ્જયણ મોણ પહુરી સમદાર હિયસ્ય સમણસ્ય કિમ કરિષ્યતિ વનવાસ કાય ક્લેશો વિચિત્ર ઉપવાસ અધ્યયન મૌન પ્રભૃતય સમતા રહિતસ્ય શ્રમણસ્ય વનવાસ વા તન ક્લેશ રૂપ ઉપવાસ વિધિ વિધ શું કરે રે મૌનવા પઠનાદિ શું કરે સામ્ય વિરહિત શ્રમણને. એસી સરળ ગાથા હૈ એને સમતા રહિત યે કુછ કામ કા નહીં હૈ. અન્વયાર્થ દેખતે વનવાસ. હા વનવાસ એને વન મે નિવાસ ક્યુકિ જો મુનિરાજ હોતે હૈ વો વન મે રહેતે હૈ ગાંવ મે કિસી કે ઘરો મે નહીં રહેતે. કાય ક્લેશ વિચિત્ર ઉપવાસ કાય ક્લેશ રૂપ અનેક પ્રકારના ઉપવાસ અનેક પ્રકારના ને એક દિન કા દો દિન કા ઇસ તરહ સે હોતે ને તો યહ ઉસમે ભી બહોત સારે અલગ અલગ તપ હોતે હૈ જૈસે આપને શાયદ વો સિંહ નિષ્ક્રિડિત વગેરે તપ કી બાત. હા તો એસે જો અલગ અલગ પ્રકાર કે ઉપવાસ હૈ વો કરના. અધ્યયન મૌન પ્રભૃતય અધ્યયન મૌન વગેરે પ્રભૃતિ કા અર્થ હોતે આદિ એક્સેટ્રા વગેરે કાર્યો સમતા રહિતસ્ય શ્રમણસ્ય સમતા રહિત શ્રમણને કિમ કરિષ્યતિ શું કરે છે એને શો લાભ કરે છે અને ઉસકા ક્યા કર સકતા હૈ કુછ ફાયદા નહીં હોગા કુછ લાભ નહીં હોગા યે કહે રહે. શ્રમણ લિયા યાને પહેલે તો મુનિ અવસ્થા ધારણ કી હૈ ઓર યે જંગલ મે રહેતે હૈ અનેક પ્રકાર કે ઉપવાસ વગેરે ધારણ કરતે હૈ મૌન સે રહેતે હૈ અધ્યયન આદિ મે પૂરે યાને દિન હા સમય બિતાતે હૈ फिर भी अगर समता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो ये सब कुछ काम का नहीं है।
ये जो बात है ये मुनियों के लिए है ना सिर्फ?
मुनियों के वहाँ आचार बताए इसलिए मुनियों का नाम लिया। अब गृहस्थ भी रहा और गृहस्थ के योग्य उन्होंने व्रतादि अंगीकार कर दिए, तो भी वो कुछ काम बिना आत्मा के अनुभव से कुछ काम के नहीं है। यानी वो गृहस्थ में घर में रहते हुए उसमें बहुत सारे ने रात्रि भोजन का त्याग किया, फिर अष्टमी चौदस को उपवास किया, आगे चलकर फिर प्रतिमाएं धारण की, बढ़ते 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 सभी प्रतिमा धारण करता गया, फिर भी आत्मा के अनुभव से रहित तो उसके कुछ लाभ नहीं, ये कह रहे हैं। ये चाही वाली बात आई ना बीच में, वो बंध का कारण है, क्योंकि चाही वाली बात अनादि से हमने सोची। देखो वो कर रहे हैं फिर भी उससे लाभ नहीं होगा, वो करते हुए अगर तत्व विचार करके आत्मानुभव होगा तो वो कुछ कर रहे वो लाभकारी है, नहीं तो अनादि से यही करते आए हैं हम। पहली बार किया ऐसा, पहली बार मनुष्य हुए ऐसा नहीं है, तो कहते वो नहीं होता तब तक क्या करे, यानी करते हैं तो वो छोड़ देने की बात नहीं है यहाँ पर, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं है। जैसा शुभ है वैसा ही अशुभ है, दोनों ही बंध के कारण है। यानी क्या मिलेगा संसार में? रखड़ना मिलेगा, कुछ फायदे का नहीं। अंदर अभिप्राय में कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ा उच्च भाव है ऐसा लगता भाव है, राग भाव है, उसको थोड़ा अधिक माना है हमने, परंतु कहते ऐसा नहीं है। पहले मानने वाली बात पहले सोचना है, पहले मान्यता से शुरुआत होते हैं, पहले पहले सुधारना है तो मान्यता सुधारनी है। और जीव क्या करता है, प्रवृत्ति सुधारने की कोशिश पहले करता है। हाँ चलता रहता है। हाँ हाँ वो कर, वो उसको तप मत कहो ये कहते हैं। हाँ यानी समझ हो गई है, कर रहे हैं कुछ आचार विचार अभी हो रहे हैं, यानी उसको आपको वैसे भाव आ रहे हैं, किसी जीव को वैसे भाव आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं, परंतु आ रहे हैं इसलिए जल्दी समय दर्शन होगा ऐसा नहीं है। ठीक है ना, नहीं आ रहे ठीक है। आप अपनी पर्सनल बात पूछ रहे हैं कि उपवास आदि करने के भाव नहीं आ रहे। देखो जो भाव किसको किस रूप से आएंगे वो तो ये हम उसके स्वामी नहीं है, और वो नहीं आएंगे तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि अभी तो समय दर्शन नहीं हुआ है और व्रतादि के भाव नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, और भी नीचे कुछ नहीं है, वो जहाँ है वहीं पर है, और नीचे कुछ नहीं। पहले में पहले होगा तो समय दर्शन से शुरुआत होगी। हाँ यानी व्रत, क्योंकि व्रतादि नहीं है इसलिए हम नीचे जाएंगे ऐसा नहीं है, यानी तत्व विचार होना चाहिए पहले में पहले, पहले उसकी महिमा होनी चाहिए। ख्याल में व्रतादि से कुछ नहीं, व्रतादि करने से जल्दी होगा समय दर्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही अविरत। बाह्य आचरण चौथे के नहीं होता है।
आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि नीचे उतर जाएगा, वो आप ऊपर कहाँ जाना चाहते हैं?
देखो देखो अनुभव होने के पहले किसी को शुभ किसी को अशुभ तो चलते ही रहेंगे, तो उसमें हम कुछ चेंजेस करने की कोशिश करके चेंजेस करना चाहते हैं, वो भाव आते हैं, और जब तक सम्यक तो नहीं होता है तब वो भावों के प्रति कुछ करूँ करूँ की बुद्धि रहती है। कर्ता बुद्धि पड़ी है वहाँ पर, भले अभिप्राय में सूक्ष्म भी है तो कर्ता बुद्धि है ही, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ है उसका अर्थ ही वहाँ कर्ता बुद्धि पड़ी है, समझ में। और वो राग का कर्तृत्व वहाँ पड़ा है, राग में कहीं ना कहीं एकत्व पड़ा है, इसलिए वो नहीं होता है तो उसको कुछ अफसोस रहता है, मुझे ये व्रतादि नहीं आ रहे। जो कर रहा है उसका थोड़ा सा लगता है कि नहीं नहीं हम तो यहाँ अन्यों से तो बड़े है, ये तो इतना तो कर रहे है, इस तरह से हो जाता है।
हाँ बोलो।
जीवन तो जोइए, न्याय संपन्न वैभव तो जोइए, अभक्ष्य खान पान न जोइए।
वो तो योग्यता है, सदाचार है, वो तो नाम, वो नामधारी जैन है, वो तो देखो देखो, आप हर एक जीव के परिणाम जो जिसको जो भाव आ रहे हैं वो जुदे जुदे होते हैं। उसमें कोई ऐसा नक्की नहीं कि ऐसा भाव आने चाहिए, ऐसे ही विकल्प आने चाहिए, ऐसा ही ये पद्धति से ऐसा, ये कुछ नहीं है। वो अलग अलग हो गए। उसमें भी बाह्य में भी किसी को भक्ति में ज़्यादा रस होगा, किसी को यात्रा वगैरह में होगा। परंतु ये जो है ना, मूल बात किस में लेना है कि निर्णय करके स्वसन्मुख होने की बात मुख्य है। अगर वो नहीं होता है और बाहर में ही ज्यादा रचा पचा रहता है तो उससे उसको कुछ कल्याण नहीं होने वाला है।
देखो बात ऐसी है, यहाँ पर ऐसा गंध आता है, यानी जिसको हम कहते हैं ऐसी बू आती है, क्या है कि हमें शुभ भावों का महात्म्य लगता है। अभी हम आज ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, क्या वह अशुभ भाव है? वह भी तो शुभ भाव है ना। हम आत्मा को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये शुभ भाव नहीं है? तो यानी बाहर के जो बाह्य आचरण जो है, जो यह जीव नहीं कर सकता है, ऐसे उनके करने में कहीं तो भी अपन आगे बढ़ गए हैं या बढ़ेंगे, ये मान्यता ही मूल में भूल भरी है। देखो अभी यहाँ क्या हुआ था, एक बहन आती थी पहले में, वो कहती थी सम्यक दर्शन तो नहीं हो रहा है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक तो शुभ भाव करने चाहिए ना, ऐसा उनका दलील था। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो शुभ परिणामों को अच्छा मानते हैं, छोड़ने योग्य नहीं मानते। अभी यहाँ तो बार बार बताया जा रहा है कि शुभ भाव कहो या अशुभ भाव कहो, दोनों ही त्याज्य है, हेय है, करने जैसे नहीं है। ये पहले मान्यता में लेना
ये बात मुख्य है। यहाँ प्रवृत्ति में छोड़ने धरने की बात नहीं है,
वो छूटेंगे भी नहीं।
और अंतर्मूर्त से ज्यादा न शुभ भाव रहते ना अशुभ भाव, वो नियम से पलटते ही है, आप चाहो या न चाहो तो भी। ख्याल में आते हैं बात?
देखो अभी आप में चारित्र गुण है कि नहीं, अभी उसका जो स्वभाव परिणमन शुद्धोपयोग है वो तो नहीं हो रहा है, तो अशुद्धोपयोग होगा। तो अशुद्धोपयोग में शुभोपयोग या अशुभोपयोग, ऐसे परिणाम होंगे ही। तुम चाहो या मत चाहो शुभ परिणाम होंगे ही, चाहो या मत चाहो अशुभ परिणाम होंगे ही। उसको हम ना बदल सकते हैं, ना ला सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ा कब कहा जाएगा कि जब यह जो अपने स्वभाव में स्वरूप में एकाग्र होगा तो भाव पैदा ही नहीं होंगे, तो कहा कि उसने छोड़ दी। तो हम तो लिटरली प्रैक्टिकली उसको छोड़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं।
दूसरी बात जो है, नियम सार या कोई भी ग्रंथ लो, जो मुख्य बात जिसको कहेंगे सम्यक तो प्राप्त करने की विधि बताई जाती है, ये आप जो परिणामों की बात करें तो पर्याय की है, क्षणिक है, परंतु उसके पीछे पूरा स्वभाव भाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसके कभी विकल्प या उसकी चर्चा नहीं आती है। और वो तो जैसा का वैसा है, उसमें कुछ करने धरने की बात नहीं है। तो अभी इसके कुछ करने धरने की ही सूझती है, क्या करने धरने की, ये पर्याय इतना, यानी अभी भी सारा लक्ष्य पर्याय ऊपर है। ये करूँ के, ये छोड़ू के, ये हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, परंतु मैं तो जानन मात्र हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा पहले नक्की करो। ये कुछ हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, और मैं तो पूरा स्वभाव हूँ, इसकी बारम्बार अधिकता होनी चाहिए। उसमें मैं अपना जितनी दृढ़ता से स्थापित निर्णय में पहुँचेंगे, तब जल्दी में जल्दी समय दर्शन हो जाएगा। समय दर्शन होने की उसकी मुख्यता नहीं है, वो तो पर्याय है, मुख्यता तो स्वभाव की है। स्वभाव को पहले नक्की करना है। और हमारे सारा लक्ष्य कहाँ, मुझे कैसे भाव आ रहे हैं? अरे तो भाव आने से रहे, हमें तो उन भावों को कुछ महत्व नहीं दे रहे, उनको गौण कर दो। स्वभाव में वो क्षणिक भाव नहीं है, है पर्याय में, यही नियम सार में पूरी विषय वस्तु यही है, उसी की मुख्यता हमको कायम रखनी है, है ना?
देखो सम्यक दर्शन होने के लिए अपने स्वभाव का स्वरूप पहले समझना चाहिए, अन्यथा अन्य कोई मार्ग नहीं है सम्यक तो होने का। जब तक यह जो अपने स्वभाव को नहीं समझेगा, यानी जिसको कहते हैं रूटीन बताते हैं, पहले ज्ञान होगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर श्रद्धा होगी कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, और ऐसे जो ज्ञान और श्रद्धा के अनुसार अपने स्वभाव में जो स्थित होगा उसको चारित्र होगा। तो ये तीनों बातें एट ए टाइम होती है। अन्य कोई भी मार्ग है ही नहीं, धर्म के शुरुआत की कहो या सम्यक दर्शन की कहो। और हम जो बाह्य क्रिया में समझते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, अच्छा सम्यक दर्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिया तो करनी चाहिए कि नहीं, यानी यहाँ चाहिए वाली जो बात है वो बहुत डेंजरस है।
और वो पर्याय की ही हम उसकी की सोच रहे, ये नहीं हो रहा है ने, वो भी सम्यक दर्शन ये भी पर्याय है, और अभी हमको शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है वो भी पर्याय है, यानी हम मात्र पर्याय के ही बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ तो मैं पर्याय से भिन्न पूरा ही गायक स्वभाव हूँ, ख्याल में उसी की। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो अभी जो हम पढ़ रहे थे 124 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी, अन्वयार्थ हमने देखा, केवल गुजराती पढ़ते हैं, वनवास काय क्लेश रूप अनेक प्रकार ना उपवास अध्ययन मौन वगैरह कार्यो समता रहित श्रमण ने शू करे छे। अभी यहाँ श्रमण की बात अगर छोड़ दो तो यहाँ के तो वनवास तो नहीं है, घर में ही रह रहा, फिर भी कुछ न कुछ तप करने की कोशिश कर रहा है, उपवास आदि करता है कभी कभी, हाँ बहुत अध्ययन भी करता है, मौन भी रहता है या विकल्प बहुत करता है उसके बारे में। तो कहते हैं आत्मज्ञान रहित गृहस्थों को शू करेगा, कुछ नहीं करेगा।
समता रहित
का समता रहित नहीं, उसका आत्मा का अनुभव नहीं, वितरागता अभी प्राप्त नहीं हुई है। अभी टीका, अहीं आ गाथामा समता विना द्रव्यलिंगधारी, द्रव्यलिंगधारी लिया यानी उसका द्रव्यलिंग ने बाह्य के आचार बरोबर यथोचित है, जैसे आगम में बताए, क्योंकि वन में रहने वाले हैं, अन्य अन्य सभी 28 मूलगुण बरोबर आगमोचित पालते हैं, परंतु क्या कहा उनको श्रमणाभास ने, उनको सच्चे मुनि नहीं कहा, उनको आभास कहा उसका, श्रमणाभास, श्रमण ने मुनि, श्रमणाभास ने किंचित परलोकनु कारण नथी, अर्थात जराय मोक्षनु साधन नथी, एम कहूं छे। कोई कोई कहते कि नहीं, आगे चलकर ऐसे करते करते मोक्ष प्राप्त होगा आत्मा का, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी उनको ये व्रतों की अधिकता लगी है, कुछ नहीं कुछ तो इतना तो कर रहे हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, यानी मान्यता में मूल में ही वो बात पड़ी है पहले से। केवल द्रव्यलिंग धारी श्रमणाभास ने, यानी केवल द्रव्यलिंग धारी लिया, यानी जो आत्मा का अनुभव रहित ऐसा लिया, उसको समस्त कर्म कलंक रूप कादव थी विमुक्त महाआनंदना हेतुभूत परम समता भाव बिना, क्या कहते हैं ये जो श्रमणाभास है और उनके कर्म कलंक से रहित ऐसे महाआनंद के हेतुभूत, महाआनंद का हेतु, महाआनंद कौन है, या कर्म कलंक रूप कादव थी विमुक्त महाआनंद क्या है, नहीं फिर से यहाँ क्या है, उसका हेतु ऐसा परम समता भाव, ये मुनियों का समता भाव, किसका हेतु है वो, कर्म कलंक रूप कादव थी विमुक्त महाआनंद, उसका अर्थ क्या है, मोक्ष, जहां कर्म कलंक रूप कादव से विमुक्त हुए हैं और महाआनंद ने अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, यानी मोक्ष के हेतुभूत।
ऐसा जो परम समता भाव,
हाँ ऐसा उसके हेतुभूत ऐसा जो परम समता भाव है, यानी मुनियों का समता भाव, उसके बिना यानी उनके मुनि योग्य समता नहीं है, मुनि योग्य वितरागता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, और क्या कर रहे वो, तो कहते एक नंबर वनवासे वसीने, यानी वन में रहकर वर्षा ऋतु में वृक्ष नीचे स्थिति करवाती, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्यना किरणोती संतप्त पर्वतना शिखरनी शिला ऊपर बेसवाती, क्या कहते वो ऐसे ऐसे तप करते हैं और जो भावलिंगी संत भी करते हैं, और वो देखा देखी ये भी करना चाहते हैं, वो बाह्य की क्रिया तो सब कर रहे हैं, जिसको कहते हैं वर्षा ऋतु में क्या कहाँ बढ़ते हैं, वृक्ष के नीचे, क्यों वृक्ष के ऊपर से जो पानी की धार बहती वो बहुत अधिक थी, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में जहाँ सूर्य का ताप अत्यंत प्रचंड है, तो कहते पर्वत के शिखर के ऊपर जाके वहाँ पत्थर पर शिला के ऊपर बेसवा थी, अने हेमंत ऋतु में ठंडी के दिनों में रात्रि मध्य दिगंबर दशाएं रहवा थी, वैसे तो दिगंबर दशा तो हमेशा ही होती है, परंतु यहाँ तो वहाँ तो ऐसा बताते हैं कि सरोवर के किनारे कहीं ऐसे अधिक ठंड होती है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो अच्छा, अभी एक वनवास बताए ना, दूसरा पॉइंट मिल गया भाई। हाँ, त्वचा ने अस्थि रूप, अस्थि ने मात्र हाड़ चाम रूप थी गएला आखा शरीर ने। क्यों? अलग अलग उपवास वगैरह करते हैं तो बस हड्डी का ढांचा जैसा रह गया है और ऊपर की चमड़ी। तो कहते आखा शरीर ने क्लेशदायक महा उपवास थी तथा इन्हें अनेक प्रकार के उपवास आदि कर रहे वन में रहते हैं। तीसरा पॉइंट, सदा अध्ययन पटुता थी, अर्थात सदा शास्त्र पठन करवा थी। आपने बताया ना, बारंबार हम वही विकल्प ही करते रहते हैं, तो यहाँ कहते स्वाध्याय और अध्ययन मनन वही चलता है उनका। चौथा पॉइंट, वचन संबंधी व्यापार नी निवृत्ति स्वरूप सतत मौन व्रत थी। यानी वो तो वचन का व्यापार रोक कर मौन धारण करते हैं। यानी सब मुनि योग्य जो सब ऐसे जो तप व्रत आदि कर रहे हैं, मौन व्रति शू जराए उपादेय फल छे, उपादेय ने पसंद करवा जाऊ, वखाणवा जाऊ, आदरणीय ऐसा कोई क्या फल मिलता है? तो कहते अर्थात मोक्षना साधन रूप फल जराए नथी, प्रश्न में उसका उत्तर मिल जाता है। एवी रीते श्री योगींद्र देवकृत अमृता शीतिमा 59 श्लोक द्वारा कहूं छे के ये अमृता अशीति, अमृत अशीति 80 श्लोकों की रचना है वो, योगींद्र देव की वो रचना है। उनके दूसरे कोई ग्रंथ मालूम है? योग सार और परमात्मा प्रकाश, यहाँ हुए थे ना दोनों ही ग्रंथ हुए अपने। योग सार तो हमने संडे को लिया था इन्होंने, और परमात्मा प्रकाश तो अपना यहाँ हुआ है स्वाध्याय में। देखो श्लोकार्थ, ये यहाँ से श्लोकार्थ कहाँ है? अच्छा अच्छा, उन्होंने वो हाँ अन्य श्लोक यहाँ बताए, यानी उन्होंने जो रेफरेंस वाला श्लोक लेफ्ट साइड में अमृत अशीति का 72 नंबर, क्या वो भी होगा ना, क्योंकि वो टीकाकार मुनिराज ने दिया हुआ है ना। गिरी गहन गुहाद्या रण्य शून्य प्रदेश, गिरी गहन गुहाद्या रण्य शून्य प्रदेश स्थितिकरण निरोध, स्थितिकरण निरोध ध्यान तीर्थोप सेवा, ध्यान तीर्थोप सेवा प्रपठन जप हो होमैर, प्रपठन जप होमैर ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि मृगय तदपरम त्वं भोहो प्रकारम गुरुभ्यः, प्रकारम गुरुभ्यः। बराबर, पहले श्लोक पढ़ेंगे फिर श्लोकार्थ। गिरी गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थितिकरण निरोध ध्यान तीर्थोपसेवा प्रपठन जप होमैर ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि मृगय तदपरं त्वं भो प्रकारं गुरुभ्यः। इसका श्लोकार्थ यहाँ 73 पृष्ठ पर है। पर्वतनी ऊंडी गुफा वगैरह मां गिरी गहन गुहाद गुहाद्या वगैरह मां के वनना शून्य प्रदेश मां रहवाती, अरण्य शून्य प्रदेश स्थितिकरण इंद्रिय निरोध थी, करण निरोध स्थिति वो प्रदेश स्थिति लेना, और करण निरोध है ना इंद्रिय निरोध, इंद्रिय निरोध थी, ध्यान थी, तीर्थ सेवा थी यानी तीर्थ स्थान मां वसवा थी, पठन थी प्रपठन बताया ना, जप थी अने होम थी, ब्रह्मनी एटले आत्मानी सिद्धि नथी यानी उससे आत्मा का अनुभव नहीं होता। माटे हे भाई तू गुरुओं द्वारा तेनाथी अन्य प्रकार ने शोध यानी ज्ञानी के उपदेश से तू बराबर नक्की कर, ये कह रहे हैं। गुरु द्वारा शोध का अर्थ क्या है? ज्ञानी गुरु के वे निमित्त बताया है तो उनके उपदेश के अनुसार सही निर्णय करके अपने आत्मा का अनुभव कर, ऐसा कहते हैं। अभी हम गुरुदेव का प्रवचन पढ़ते हैं। केवल द्रव्यलिंगधारी श्रमणाभास ने एटले के बाह्यनी क्रिया करे, बायड़ी छोकरा कुटुंब छोड़े अने नग्नपणू धारण करे, 22 परिसह सहन करे अने 5 महाव्रत पाड़े, छता ए द्रव्यलिंगी छे। क्यों? आत्मा के अनुभव बिना है। जेने अंतर भगवान आत्मतत्वनी प्राप्ति नथी थई, कहूं छे ने, अंदर वस्तु जे चैतन्य स्वरूप ज्ञान अने आनंद थी भरेलो प्रभु, एनी प्राप्ति नथी, तेने आनाथी काई फल नथी। आपके प्रश्न का उत्तर मिला बेन, मनीषा बेन, बेन, यानी वो कौन से पर्याय में कौन से भाव आ रहे उसे कोई महत्व की बात ही नहीं है, मूल बात ही। देखो देखो, द्रव्यलिंग धारण करने का निषेध नहीं है। निषेध किस बात का है कि उसी को धर्म मान के बैठे हैं, उसी को मुनिपना माना है, क्योंकि ऐसे कितने द्रव्यलिंगी है जो पहले गुणस्थान से सातवें में जाते हैं डायरेक्ट औक्षमिक सम्यक्त्व के साथ, औक्षमिक सम्यक्त्व के साथ, यानी उन्होंने पहली बार अभी अपने मिथ्यात्व में से वो जा रहे हैं सम्यक्त्व प्राप्त के डायरेक्ट सातवें में। तो ऐसे कितने दिन में हो गए नियम से मुनि? हाँ लक्ष्मी, याद है औक्षमिक सम्यक्त्व के से? देखो औक्षमिक सम्यक्त्व शांतर मार्गणा है, कोई जीव पहले से चौथे में कोई एक जीव गया और फिर बीच में कोई नहीं गया तो कितने दिन में जाएगा? तो 7 दिन में, चौथे गुणस्थान के लिए 7 दिन रात। कोई पांचवें पहले से चौथे में जाने वाले 7 दिन में तो कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा। जाने वाले तो असंख्यात भी हो सकते एक समय में, पर हो सकता है कि बीच में इतना अंतर पड़ा कि कोई एक भी जीव उसमें नहीं गया, तो 7 दिन में कोई जाएगा जाए चौथे में, पांचवें में मिथ्यात्व में से 14 और 15 दिन में कोई ना कोई जीव द्रव्यलिंगी जो है वो तो सातवें में जाएगा ही जाएगा। वो क्यों जाएगा? वो द्रव्यलिंग के कारण नहीं जाएगा, वो तो तत्व विचार सही निर्णय के साथ जाएंगे। यानी पहले गुणस्थान में कोई व्रत नहीं करते ये बात नहीं है, व्रतों का निषेध नहीं है, मान्यता सही होगी उनकी और यथोचित जिसको स्वसन्मुखता करेंगे तो उनको आत्मा के अनुभव के साथ किसी को चौथा किसी को पांचवा किसी को सातवां गुणस्थान प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, आपका प्रश्न है तो कोई द्रव्यलिंग धारण ही नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, कर सकता है, मान्यता सही होनी चाहिए, ये मुख्य बात है। यहाँ कौन से द्रव्यलिंग का निषेध करे? जो उसी को मोक्ष मार्ग मानकर बैठे है और उसी को करने लायक मानते हैं, जो सही जो है जीव, जो आगे चलकर अभी भावलिंग धारण करने वाले हैं, वो उस द्रव्यलिंग जो धारण किया है उसको उपादेय नहीं मान रहे, उनकी मान्यता सही है तब तो अंतरंग में स्थिर होकर वो सातवें में जाते हैं। ख्याल में आई बात? पेज नंबर 73 पर है हम। देखो ये फिर से पढ़ते, प्रवचन से शुरुआत करते। केवल द्रव्यलिंगधारी श्रमणाभास अने बाह्य मुनि के आचार बरोबर 28 मूल गुण नग्नपणु सब यथोचित पाल रहे, वन में रह रहे और उपास आदि करते हैं, ये सब यथोचित हो रहा है, फिर भी उनको श्रमणाभास कहा, मुनि नहीं कहा। श्रमण ने मुनि, दिगंबर मुनि को श्रमण कहते हैं, और ये श्रमणाभास ने एटले के बाह्यनी क्रिया करे, बायड़ी छोकरा कुटुंब छोड़े अने लग्नपनु धारण करे, 22 परिसह सहन करे, 5 महाव्रत पाले, यानी बिल्कुल जैसे आगम में बताया इस तरह से निरतिचार पालते हैं, छता ये द्रव्यलिंगी छे। जेने अंतर भगवान आत्मतत्वनी प्राप्ति नथी थई, आत्मा का अनुभव नहीं है, कहूं छे ने, अंदर वस्तु जे चैतन्य स्वरूप ज्ञान अने आनंद थी भरेलो प्रभु, एनी प्राप्ति नथी, तेने अनाथी काय फल नथी। यह मुनिराजों की बात है तो मुनि योग्य आचरण से कुछ फल नहीं है। ऐसे आपका जो प्रश्न था, हम गृहस्थ है तो गृहस्थ में रहते हुए यहाँ जो व्रत तपादि कर रहे हैं उससे भी कुछ भी लाभ नहीं है। ये तो अशुभ करने वालों से तो भले है ना, ये तो पर्याय की बात ही नहीं है, शुभाशुभ तो चलते रहते हैं। हमें तो इनसे रहित जो अपना जो स्वभाव भाव है त्रिकाली कारण परमात्मा, उसका निर्णय करके उसके सन्मुख होकर उसमें स्थिरता करनी, तभी कुछ हमें मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी, तब तो हमारा ये मनुष्य भव सार्थक हम कहेंगे, क्योंकि हमारी सच्ची पहचान हो गई तभी। नहीं तो क्या पर्याय में हेरा फेरी चल रही है ना, हेरा फेरी क्यों, या ऐसा हो रहा है इसलिए उसको पलट कर शुभ करना चाहता है, और लक्ष्य तो पर्याय मात्र का रहता है, पर्याय का लक्ष्य छूटा ही नहीं है। ख्याल में आई बात, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? देखो अपनी भूल अपने को ही पकड़ना है, और वो अभिप्राय में हो रही है। प्रवृत्ति की यहाँ कोई पहले उपदेश ही नहीं प्रवृत्ति का, आप कुछ बोलेंगे?
आपने अभी बताया कि इसका कोई फल नहीं है, किसका? हाँ। ये फला फला चीज का।
हाँ।
यानी शुभ भाव का समता रहित ऐसा जो है, तो वो कार्य तो हुआ तो हाँ। उसका फल तो कुछ होगा कि नहीं होगा?
हाँ, फल होगा। सफल क्यों है? संसार में रखड़ने के लिए सफल है।
अच्छा, संसार में रखड़ेगा?
रखड़ेगा, एकाध मिलेगा, मान लेते हैं।
मानता क्या है कि मैं
धर्म कर रहा हूँ और ये करते करते मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा मान रहा है। ये मान्यता खोटी है, ये ऐसी खोटी मान्यता वहाँ पड़ी हुई है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो भूल तो यही हो रही ना, तो कहीं ना कहीं ये व्रतों की अधिकता भाषित होती है, और जीव उसी को करना चाहते हैं। समय दर्शन नहीं हो रहे तब तक क्या करे, तब तक क्या करे, तब तक निर्णय करे, और समय दर्शन होने के लिए सही प्रयत्न करे। यहाँ शुभ अशुभ भाव करने नहीं करने की बात ही नहीं, वो तो हो ही रहे ना अनादि से, वो करने से हो रहे ऐसी थोड़ी बात है, वो तो हो ही रहे है ना। क्या कहते देखो, देखो इनाथी काई फल नहीं छेनू फल। देखो इनको ने प्रश्न कि संसार में रखड़वानू फल छे, क्योंकि एक दो बार नहीं, शास्त्र में आता है मुनिव्रत धार अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार। ये द्रव्यलिंगी मुनि अनंतो बार हुआ, अनंतो बार तो ग्रैवेक नवे ग्रैवेक तक उत्पन्न हुआ है, फिर भी आत्मज्ञान के बिना उसको लेश मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। और अनंत बार मुनि होने के लिए, अरे मुनि होने के लिए पहले मनुष्य भव मिलना चाहिए, और मनुष्य भव इतना दुर्लभ है, हो सकता है कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक तो एक इंद्रिय आदि में रखड़ता है, फिर 2000 सागर के लिए तो त्रस में आता है, हो सकता है कि त्रस में उसको एक भी मनुष्य भव न मिले है, हो सकता है। तीर्यंच तो होगा ही होगा, देव भी है ना, 100 सागर पृथक्त के बाद देव भी हो सकता है, तो होगा ही होगा नियम से, नारकी भी होगा, तीर्यंच भी होगा। यानी तीर्यंच आयु न बांधे इतना बड़ा काल तो इतना लंबा जा सकता है, परंतु मनुष्यायु नहीं बांधे ऐसे भी लंबे काल तक, अनंत काल तक हो सकता है। तो इसलिए ये बात है कि मनुष्य होना दुर्लभ है। अब मनुष्य इतनी बार हुआ, अनंत तो बार हुआ, परंतु हम आप मनुष्य है कितने, वो मुनिपना धारण करने के भाव कितने जीवों को होता है। हम उत्सर्पिणी अवसर्पिणी देखते हैं, वहां तो भोगभूमि का काल कितना है, पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर में भोगभूमि का काल कितना है लक्ष्मी, 18 कोड़ा कोड़ी सागर तो भोगभूमि का। हाँ, अभी छठा काल तो छोड़ो, उसमें कोई मुनि नहीं, यानी मुनि कब होगा, चौथे पांचवें काल में। अब द्रव्यलिंगी होकर ग्रहवेग तो चौथे ही काल में जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप यहाँ की बात कर रहे, अभी यहाँ की छोड़ो, विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही हो सकता है, परंतु वो कितने बार ऐसा मनुष्य होकर जन्मा है और कितने बार उसने द्रव्यलिंग धारण किया होगा, फिर भी इतने रेयर में रेयर बाद भी अनंत बार हो चुकी है, फिर भी उसको उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है। यानी द्रव्यलिंग धारण किया नहीं, वो तो गृहित मिथ्या दृष्टि तो नहीं था, सच्चे देव गुरु को ही मान रहा था, और वैसे जैसे आगमोचित तो उसको व्यवहार पाल रहा था, फिर भी उसको धर्म मानकर कर रहा था, और वो करने योग्य मानता था, और वो करते करते मोक्ष मिलेगा ऐसी मान्यता थी। मान्यता में इतनी गड़बड़ थी, बाहर तो प्रवृत्ति में इतनी सारी बातें कर रहा था, ख्याल में आती है ना। और हम आप भी वही, वो मुनि हुआ था और हम गृहस्थ के योग्य व्रतादि करते हैं और मानते हैं कि हम थोड़े आगे बढ़े हैं, और उसमें जितना पुरुषार्थ चलता है, जितने चौकन्नों सावधानी होकर करते हैं, क्या ऐसी सावधानी अपने स्वसन्मुखता में लगती है क्या? वो कुछ करने जैसा नहीं लगता है ना, कुछ किया ऐसा लगता नहीं उसमें। ये तत्व निर्णय की बात जो महत्व की सबसे पहली करने योग्य बात है, वो रह जाती है और बाकी सब हम दुनियादारी करने बैठ जाते हैं। देखो यहाँ लिखा, देखो क्या फल मिलता है, संसार में रखड़वानु फल मिले छे। केवल द्रव्यलिंगधारी श्रमणाभास ने समस्त कर्म कलंक रूप कादव थी विमुक्त, संपूर्ण कर्मों से विमुक्त कौन सी दशा है, तो मोक्ष दशा। ऐसी क्या है, महा आनंद, यानी वहां जो अनंत सुख मिलता है उसके हेतुभूत, उसके कारणभूत क्या है, वो परम समता भाव, यानी जो जिसको हम कहने भावलिंगी संतों को परम समता भाव होता है, उसके बिना यानी आत्मा के अनुभव के बिना आवी समता जोइए। समता की व्याख्या करी के पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन, कर्म कलंक रूप कादव थी विमुक्त, परथी नास्ती लिधि हवे अस्ति। देखो एक एक वाक्य में से कैसा निकाल रहे हो, तो नास्ति किसकी, कर्म की, अस्ति क्या है, वहां कर्म का निकल गया, अपन तुमको क्या मिला, तो कहते महा आनंद, अनंत सुख, महा आनंद ना हेतुभूत परम समता भाव, समता भाव एने कहो, अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद आवो, ए समता भाव छे। और तभी उसको समय दर्शन कहेंगे, नहीं तो हमने शास्त्र पढ़े, हमने भगवान की वाणी पर विश्वास रखा, ये हमारा समय दर्शन हुआ, वो समय दर्शन नहीं कहलाता। एम कहे, हाँ हाँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान एनो स्वाद आवो, एनो अनुभव थवो, एनु नाम समता कहे छे। आ समता नी व्याख्या छे, एने सामायिक कहे छे। ये समभाव, उसकी आ यानी प्राप्ति होना, वो सामायिक है। हमने सामायिक का पाठ बोल दिया और एक जगह बैठ गए, उसको सामायिक नहीं कहते। ए परम समता भाव बिना वनवास से वसी ने, आप कहेंगे एक जगह स्थिर तो बैठे ना, कुछ तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ सामायिक का, हमने पाठ बोला है ना, तो हमने दुनियादारी छोड़ी और हम बैठे रहे, तो हम टीवी के सामने भी बैठे रहते नहीं, नहीं, पर वहां तो दूसरा लक्ष्य करते हैं, आप अशुभ भाव कर रहे हैं या तो हम शुभ भाव कर रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं, शुभ भाव की ही महत्ता आ रही है ख्याल में। उस समय अगर बैठे हैं शांति से, तो वो तत्व निर्णय में कितना काल जा रहा है हमारा, शांति से बैठे हैं ना, अपने टाइम निकालकर शांति से बैठे हैं, तो वो बैठे हैं तो वो सही तत्व निर्णय चल रहा है क्या, उसको एक क्रिया के रूप में मानकर वो हमने ये सामायिक पूरी कर दी, ख्याल में आती है बात, क्या कहते हैं यहाँ पर। देखो ये इस गृहस्थ के भी सब गृहस्थ में पांचवे गुण स्थान में तो सामायिक, तो वो जिसको कहें ना वो व्रत है, उनके लिए शुभ भाव है। हमने देखा ना वो प्रतिमाओं के नाम में अपने याद किए थे कि नहीं किए थे, कौन सी प्रतिमा है सामायिक की, तीसरी है, पहली दर्शन प्रतिमा है, दूसरी व्रत, तीसरी सामायिक प्रतिमा, यानी वो नियम से तीन बार सामायिक को बैठेगा, शांतिपूर्वक बैठेगा, पर उस समय ये उसका चिंतन मनन चलेगा सही निर्णय पूर्वक, और उसमें कभी कभी उसको शुद्धोपयोग भी होगा, परंतु ये सामायिक व्रत है और मुनियों को सामायिक तप होता है, वो अंतरंग में स्थिरता बहुत है उनकी, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होती है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, अतीन्द्रिय आनंद, ये बताए ना चौथी लाइन, एने सामायिक कहे छे। ए परम समता भाव बिना, अभी ऐसा समता भाव नहीं है, और क्या है, ये पूरा द्रव्यलिंग धारण किया है, तो वो क्या क्या करते हैं, उससे उनको क्या क्या लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा चल रही है। तो कहते हैं वनवास से वसी ने, भले वन माँ जंगल माँ वसे, क्योंकि मुनिराज तो सच्चे मुनिराज तो जंगल में ही रहते हैं, तो ये शून्य जो कुछ छोड़ा हुआ घर या जो गांव के बाहर कोई उपवन होते हैं वहां उनका रहने का ठिकाना होता है, तो कहते वो वनमा जैसे सच्चे मुनि जैसे होते हैं वैसे वहां वन में बाह्य क्रिया बिल्कुल सच्ची करे, जंगल में वसे, वर्षा ऋतु में वृक्ष नीचे स्थिति करवाती। देखो आत्मा ना अनुभव बिना, ये बारंबार बता रहे, आत्मा ना आनंद ना स्वाद बिना वन में रहे के चौमासान में वृक्ष नीचे रहे के ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य ना किरणों थी संतप्त, संतप्त यानी उससे तपे हुए, पर्वत ना शिखर नी शिला धगधगती, एना ऊपर बेसवा थी, એ શું છે? એ ક્રિયાકાંડ છે. અને હેમંત ઋતુમાં, એને ઠંડી કેરી સિઝન મેં રાત્રિ મધ્ય દિગંબર દશાએ રહેવાથી, હેમંત એટલે શિયાળો, શિયાળામાં રાત્રિમાં દિગંબર દશાએ રહે, એને ચોવીસે ઘંટે વો દિગંબર દશામાં હી રહેતે હૈ, પણ ઠંડી કે દિન મેં એસી અવસ્થા મેં રહેને સે તો, ઓર બહાર સે તો કિતની ઠંડી પડતી હમ તો સોચ સકતે હૈ ના, યહાં તો હૃદય કે ઉપર હૃદય ઓઢ કર સોતે હમ. તો કહેતે ફિર ભી ઉનસે ઉનકો કુછ નહીં મિલા હૈ, ક્યુંકિ આત્મા કા અનુભવ નહીં હૈ. જો આત્મા કે અનુભવ વાલે, જો સમતા ભાવ વાલે જો હૈ, ઉને યે તો બહાર કી તો ઉનકે શરીર કો તો પરદ્રવ્ય હૈ હી, વો ઉનેને અપને આત્મા કા અનુભવ કર લિયા હૈ, ઓર વો અપને અતિન્દ્રિય આનંદ મેં ઉસ સમય ભી અતિન્દ્રિય આનંદ કા અનુભવ કરતે, ઓર યે ક્યા કરે, ઉનકે વો દુઃખ કા અનુભવ હો રહા હૈ, ઉસકો વો સહન કર રહે. દોનો મેં ડિફરન્સ હમને, અનુભવ ઉનકા દુઃખ કા ચલ રહા હૈ, ઓર ઇનકા અનુભવ અતિન્દ્રિય આનંદ કા ચલતા હૈ, ભાવલિંગી સંતો કા. ક્યુંકિ ક્રિયા તો બહાર સે એક સી દિખતી હૈ દોનો કી. બીજો પોઈન્ટ, પહેલામાં વનવાસ શબ્દ આયા થા ના, અભી સેકન્ડ, ત્વચા અને અસ્થિરૂપ માત્ર હાડ ચામરૂપ થઈ ગયેલા, એને એસે વિવિધ પ્રકાર કે ઉપવાસ કરતે તો અભી ખાલી હડ્ડી ઓર ઉપર કી ચમડી એસા દિખ રહા હૈ, સ્કેલેટન જિસકો કહેંગે, એવી તપસ્યા કરી કે માન ચામડા અને હાડકા બે રહ્યા, એવી તપસ્યા પણ નિરર્થક છે. ઉસકો એક તપ કહેતે હી નહીં ખરેખર તો ઉપવાસ કરને કો, પરંતુ ઉન્હોને વો બાહ્ય જો તપશ્ચરણાદિ હોતે વો કર લિયે. સ્વ આશ્રય વિના પ્રભુ અતિન્દ્રિય આનંદમય આ આત્મા, દેખો યે પર્યાય મેં જબ બાત હો રહી હૈ, શરીર કે એસી દશા હો રહી, ઉસ સમય ભી ઉનકા ભી આત્મા જો હૈ કારણ પરમાત્મા હૈ, વો આનંદમય હૈ, ફિર ભી ઉસકા અનુભવ ઉનકો જરા ભી નહીં હૈ, ક્યુંકિ ઉસકી બાત હી કભી સોચી નહીં ઉન્હોને. તો કહેતે અતિન્દ્રિય આનંદમય આ આત્મા, એની સન્મુખતા, એનો આશ્રય, એનું અવલંબન, વર્તમાનમાં આનંદના અનુભવ વિના એ બધી ક્રિયા નિષ્ફળ છે. ક્યુંકિ લક્ષ્ય સારા કહા હૈ, વો ક્રિયા બરાબર સાવધાનીપૂર્વક હો રહી હૈ કે નહીં હો રહી હૈ, ઓર યે પર્યાય મેં જો ક્રિયાએં હો રહી હૈ, ઉસકે જો શુભ ભાવ આ રહે ઉતના મેં હું, યે માન્યતા કે સાથ પર્યાય દૃષ્ટિ ચલ રહી હૈ, ઉનકી પર્યાય બુદ્ધિ ચલ રહી હૈ, અને ઉનકા મિથ્યા તો વૈસા કા હૈ વૈસા હૈ, ઉલટા તો માન રહે કે હમ બહોત આગે બઢે હૈ ઓર હમ મોક્ષ માર્ગ પર મુનિ અવસ્થા મેં સ્થિત હૈ. માન્યતા તો ઓર પક્કી કર લી ના ઉન્હોને, અગર માનતે કે નહીં નહીં અભી તો મેં સહી નહીં, અભી મુજે આત્મા કા અનુભવ નહીં હુઆ હૈ, મુજે ઓર નિર્ણય તક પહોંચના હૈ, તબ તો ઉનવો આગે માર્ગ હૈ ઉનકે ભી, ઉનકે ભી ક્યુંકિ પહેલે દિગમ દ્રવ્યલિંગી તો થી, અભી દિગમ એને સહી માન્યતાપૂર્વક આત્મા કા અનુભવ કરેંગે તો ઉનકે તો સાતવા ભી ગુણસ્થાન હો સકતા હૈ ઇતને પુરુષાર્થ સે. એનાથી કાંઈ આત્માનું કલ્યાણ છે ને, એને બાહ્ય ક્રિયાકાંડ સે કુછ ભી કલ્યાણ હોને વાલા નહીં હૈ. યે તો મુનિરાજ કી બાત હૈ, હમે ભી અપને ગૃહસ્થ કે યોગ્ય ભી એસે સમજના હૈ કે કોઈ ક્રિયાકાંડ સે લાભ હોને વાલા બિલકુલ નહીં હૈ. લાભ હોગા તો સહી નિર્ણય કરકે સ્વ સન્મુખતા સે હી શરૂઆત હોગી, વહાં સે તો શરૂઆત હૈ. આખા શરીરને ક્લેશદાયક મહા ઉપવાસથી અપવાસ કરે, કેવા કે ક્લેશદાયક અપવાસ, પાછા આનંદ તો નથી, આનંદ તો આત્માનો આનંદ તો નથી, એટલે ક્લેશ છે કહે છે. ક્યાં કહા, જબ તક આત્મા કા અનુભવ રૂપ અતિન્દ્રિય સુખ નહીં હૈ તો ઉપવાસ મેં તો ક્લેશ હી હૈ, ક્લેશ કા હી અનુભવ હૈ, ઓર ઉસકો માન રહે કે હા બહોત અચ્છા હો રહા હૈ. સંકિત વિનાના અપવાસ ક્લેશ છે, ઓર કાય ક્લેશ હૈ, વો તો સમજતા હૈ કે શરીર કો જીતના કષ્ટ દે દો, જ્યાદા કષ્ટ દે દો ઓર બહોત કામ કરવા લો ઉસસે તો મુજે ધર્મ હોગા. ક્લેશદાયક મહા ઉપવાસ થી, મહા એટલે ઘણા ઉપવાસ. તીસરા પોઈન્ટ, સદા અધ્યયન પટુતાથી, શાસ્ત્ર વાચનમાં પણ પટુ એટલે ડાયો, દિનભર સ્વાધ્યાય વગેરે કરતા રહેતા. મનીષાબેન કો હસી આવતી, શાસ્ત્ર વાંચે ખૂબ અધ્યયન કરે એથી શું કહ્યું, શાસ્ત્ર અધ્યયનમાં પટુતા, શાસ્ત્ર અધ્યયન ડબલ યે હો ગયા, अध्ययन हुआ, शास्त्र अध्ययन सदा पठन पठन, शास्त्र पठन करे रात दी। आहा हा, अहियाँ अपने आवे छे ने, पहले पहोरे मुनि स्वाध्याय करे, पछी ध्यान करे, पछी पाछली पहोरे सहज शयन करे, रात्रिना पाछला भागमा चढ़ाड़मा आवे छे पाछली राते। एथी शू कहे छे, आत्म ज्ञान विना ए बधी क्रिया निष्फळ छे, फळवाळी छे पण संसारना, फळ तो है पण संसार में रखड़ने का फल है। आ वस्तु लोगों ने आखरी लागे, ये ऐसा सुनने को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कर रहे अभी क्या ये सब बेकार है, कौन मानेगा? आखरी लागे खाली कठिन लगती है क्या, वो कबूल ना करे। हाँ, केवल कठिन लगती है क्या आखरी, नहीं वो तो सुहाती नहीं है। हाँ, सुहाती नहीं, हाँ हाँ वही वही सुहाती नहीं है, सुनने को भी अच्छी नहीं लगती। नहीं मैंने बोला, हाँ मैंने बोला, मैंने बोला सुहाती नहीं है। हाँ वही चुपती है। देखो अर्थात सदा पाठ शास्त्र पठन करवा थी, एक और कहूं के शास्त्र नो अध्ययन करूं, शास्त्र नो अभ्यास करवो, प्रवचन सार में आयु छे ने, पण ए तो स्व लक्ष्य, क्या कहा, स्व सन्मुखता से करना चाहिए, हमेशा स्व को मुख्य रखना है। कोई भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसका अप्लाई करते करते स्व की ओर किस तरह से मुड़ना, ये ट्रिक अपने को आनी चाहिए। कोई भी सिद्धांत हो, भाई द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हो, सात तत्व पढ़ रहे हो, कि अपने निज तत्व को किस तरह से विषय करना, ये मुख्यता करनी उसकी। यहाँ लिखा ना, ये स्व लक्ष्य, पोताना आत्माना ज्ञान ने लक्ष्य स्वाध्याय करवो, ये बहुत महत्व की बात है। ने हमने तो सब याद कर लिया, ठकाठक बोल दिया तो कहते उसकी बात नहीं है। हाँ, ये सुनाने के लिए नहीं, पोताना आत्माना लक्ष्य, आत्माना ज्ञान ने लक्ष्य स्वाध्याय करवो। आ तो एकली आत्माना ज्ञान विना एकली स्वाध्याय कर्या करे ने माने के इमाती कांईक थई जशे। हा हा, वो आता है ना कि 11 अंग 9 पूर्व तक पाठ कर लिया उसने, शास्त्र महाशास्त्र पाछो, सदा शास्त्र पठन, सदाय करे रात ने दी शास्त्र शास्त्र। हा हा, अथवा चौथा पॉइंट, वचन संबंधी व्यापार ने निवृत्ति, मौन धारण करे, बोलवो बंद करे, सतत मौन व्रत थी, निरंतर मौन व्रत धारण करे। अभी इतना सब करने से चार बातें बताई अलग अलग, शू जराय उपादेय फल छे, एनाथी शू किंचित पन फल उपादेय छे के ते नथी। श्लोक आकरो आयो, आटला अपवास करे, मौन रहे, शास्त्र पठन करे, रात दी शास्त्र वाचन करे, पण ए तो बधु परलक्षी छे। अभी देखो, कोई ऐसी व्यक्ति हो कि जो जंगल में भी रहती है और इतने सब उपवास आदि कर रहे हैं, शास्त्र पाठन निरंतर रात दिन कर रहे हैं, है ना, मौन से भी रहते हैं, और फिर वो तो उसको कितना लोग हो हा करेंगे, जय जयकार करेंगे, तो कहते कि आत्मज्ञान के बिना उस जीव को कुछ नहीं मिल रहा है। किसी का नाम मत लो। अंतर आत्मा आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय शांत स्वरूप, ए दृष्टि में अनुभव में आया विना ए बधी क्रियाओं संसार खाते छे, यानी वो संसार में ही रखने के लिए काम आने वाली है। ए क्रिया थी कहीं आत्मा ने लाभ था एम बिल्कुल नथी, क्योंकि ये तो सारी शरीर मन वाणी आदि की जो क्रिया है वो मेरी है समझ कर रहे हैं, वो क्रिया करने की जो शुभ राग है उससे मुझे लाभ होगा, मोक्ष मार्ग पर मैं हूँ और मुझे मोक्ष मिला, ऐसा मानते हैं। मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है ना वहाँ पर। अहीं तो आवी योग चोखी बात छे, दुनिया ने आकरू लागे, मुमुक्षु उससे संसारी करता सारा ने, यही तो लगता है। अरे दूसरों से थोड़े भले कि नहीं, या अपने पूर्व पर्याय से थोड़े भले हो गए कि नहीं, ऐसा भी लगता है ना। भले दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम पहले कुछ नहीं करते थे, अभी इतना सारा हम कर रहे हैं। ઉત્તર બિલકુલ જરીએ સારા નહીં. અહીં તો કહે જેવા અનાદિ સંસારી પ્રાણી છે એવો ઈ છે. અભી કોણ માનેગા? ક્યુકી કોઈ તો અભી વો તો હિંસાદી કર રહે, કોઈ વો અતિરેકી જો હૈ ના વો તો એક દૂસરે સે યુદ્ધ કર રહે, માર રહે, તો ઉનસે તો મેં ભલા હું કે નહીં હું? યા ક્યા કહેતે હૈ? જેવા અનાદિ સંસારી પ્રાણી છે એવો ઈ છે. શું જરાય ઉપાદેય ફળ છે? થોડા ભી ક્યા ને, થોડા તો હોગા, થોડા તો હોગા, એ પુણ્ય સે થોડા તો આગે યહી સંયોગ મિલેગા? તો કહેતે નહીં, એ સંસાર મેં રખડેગા. અર્થાત મોક્ષના સાધનરૂપ ફળ જરાય નથી. જરીએ કિંચિત કીધું ને, જરીએ પણ આત્મામાં લાભ નથી. એસા ભી નહીં કહા કે ઇસકે પુણ્ય, અભી ઇતના પુણ્ય કર રહા હૈ તો ઉસકે કારણ ઉસકો આગામી ભવ મેં ભી યહી માર્ગ મિલેગા, એસી કુછ બાત નહીં બતાય. क्योंकि अभी जो मार्ग मिला है, अभी जो अवसर मिला है, वो तो इसे में खो दे रहा है, क्रियाकांड में. जो करना है तब नहीं कर रहा है, तो इसके कारण पुण्य बंधेगा और भविष्य में मुझे मौका मिलेगा, ये बात कहाँ से आई? है ना? आ कहीं सारा छेज नहीं. समय दर्शन बिना ये बधी क्रिया संसार खाते रखड़वानी छे. आत्मा ने माटे कहीं फल नहीं. हाँ हाँ, मोक्षना साधन रूप फल जराय नहीं. સાધન રૂપ કિંચિત સાધન નથી, હે ના? ઇસકો સાધન કુછ તો સાધક, સાધકો કુછ તો સાધન કરના ચાહીએ ના? આપકે પ્રશ્ન થા કે નહીં? તો કહેતે જેને લોકો સાધન કહે છે, કિસકો? વ્રત કરવા, તપ કરવા, તપસ્યા કરવી, ભગવાનની ભક્તિ કરવી, એ સાધન અને સમયદર્શન સાધ્ય. અહીં કહે છે તારા સાધનનું કિંચિત ફળ નથી, એને એ બિલકુલ સાધન નહીં હૈ. સમ્યક દર્શન તો પરની અપેક્ષા વિના, ઉસમે યે કિસી કી યે ઇસકી અપેક્ષા હૈ નહીં. નિરપેક્ષ ભગવાન આત્માનું અવલંબન કરતા, અભી એ કર રહા હૈ યા નહીં ભી કર રહા હૈ, તો ભગવાન આત્મા તો પરિપૂર્ણ હૈ. વ્રત કરને સે ઉસમે થોડી પરિપૂર્ણતા અધિક આતી હોગી ના? ક્યા કહેતે? પહેલે તો થોડા કમ થા, અભી વ્રતાદિ અંગીકાર કીએ તો અભી ભગવાન આત્મા પરિપૂર્ણ હુઆ. તો કહેતે તો અનાદિ સે વો પરિપૂર્ણ હી હૈ. તો કહેતે યે નિરપેક્ષ એસા જો ભગવાન આત્મા એનું અવલંબન કરતા અનુભવ થાય તે સમય દર્શન છે. દેખો અનુભવ થાય માલ્યો આ થાય, વો હમને પઢા શાસ્ત્ર મેં સે ઓર શ્રદ્ધા કી, ઉસકો સમય દર્શન કહેતે નહીં હૈ. અનુભવ સહિત વાલી વો પ્રતીતિ હોતી હૈ, એ સમય દર્શન છે. પરને કારણે કાંઈ નથી, કે પરની આ ક્રિયા આટલી કરી તો કંઈક મદદ મળી, તપસ્યા ઘણી કરી, શાસ્ત્ર અધ્યયન બહુ કર્યા તો સમકિત પ્રાપ્ત થવામાં મદદ મળી, એમ નથી. બિલકુલ નિષેધ કરે હે ને. મુમુક્ષુ પૂછતે સમય દર્શનના હેતુથી ક્રિયા કરી જો હમ કર રહે હૈ, હમારા હેતુ તો સમય દર્શન હૈ. ઉત્તર જરીએ નહીં, સમય દર્શનના હેતુથી ક્રિયા કરે તો પણ સમય દર્શન નહીં, એ તો રાગ છે. અને ઉસકે કારણ સમય દર્શન નહીં હોને, વો સમય દર્શન કા હેતુ હી નહીં હૈ, એ રાગ હૈ. રાગ એ સમય દર્શન વિતરાગનો હેતુ હોય, ક્યુકી સમય દર્શન એ વિતરાગતા હૈ, તો રાગ સે વો હોગા ક્યાં? આખરી વાત છે બાપુ, સમય દર્શન ચીજ એવી છે, શું થાય કોને કેવું? અત્યારે તો બધો ફેરફાર થઈ ગયો. આત્મા અંદર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, અનાકુળ આનંદ સાગર. દેખો આત્મા તો હંમેશા સે હી એસા હૈ, અનાકુળ આનંદ કા સાગર. એને કોઈ આ ક્રિયાકાંડના કારણે કાંઈ પણ લાભ નથી. એ ક્રિયાકાંડ તો અનંતવાર કરી છે. હા હા, એ ક્રિયાકાંડ મેં તો સારા લક્ષ્ય તો ક્રિયા કા શરીર કા ઓર પર કા ઓર વો રાગ કા હી હૈ. યહાં તો ઉસકા લક્ષ્ય છોડ કે અપને અંદર સ્વભાવ મેં લીન હો જાયેગા તો અતિન્દ્રિય આનંદ પ્રકટ હોગા, યે સબ દુઃખો કા અંત આ જાયેગા. રુકતે હૈ અભી યહાં પર. એ ક્રિયાકાંડ તો અનંત વાર કરી છે, એક બે વાર નહીં અનંતો વાર. અભી અનંત કિસકો કહેતે વો પતા નહીં હૈ ના? અરે અસંખ્યાત, મિનિમમ અસંખ્યાત કા સ્વરૂપ દેખને જાય તો પસીના છૂટતા હૈ. દેખા થા ને અભી શિબિર મેં આઈ થી ને? હા, અભી કલ પડેંગે બાકી ચીજ. જાવાણી કે જ્ઞાન તે सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हूँ।